हरि हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरोधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरोधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय ललित विशाखा जय राधेश्याम ललित विशाखा जय राधेश्याम जय जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नीताय गौर पवनंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद भूपाद की सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सुभपाद की वैष्णव पराकाष्ठा मूर्ति गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की श्री सत्यसिंह भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम सिद्धशील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की गंगा माई की यमुना माई की राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्ध द्वादश नाटक ब्रजमंडल धाम की हिताय गौर पवनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् शिनवतां सकथां कृष्ण पुन्न सवन कीर्तनः हृदयन्तस्तहि अभद्राणि विधुनाति सुहित्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी मूकं करति वाचालम् पुंगुं लंघयति गिरीं जत्किपातमहं वन्दे परमानंद माधवं चित्तेश्वरं तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 19 पर श्रवण करेंगे। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चासि सुरा त्वपि देहमव्ययम् करोतु मिदभ्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामी भजन्त इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं चासि सुरा त्वपि देहमव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरातपि देहमव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोक्षणम्। यं धर्म कामाय त विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरातपि देहमव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोक्षणम्। माताय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरातपि देहमव्ययम् करोतु मेदाभ्रदयो विमोक्षणम्। यम जिस व्यक्ति को धर्म अर्थ काम विमुक्त कामा, ऐसे व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार सिद्धांतों की कामना करते हैं, भजन्तः पूजा द्वारा इष्टाम लक्ष्य को, गोतिम गंतव्य आपनुवंति प्राप्त कर सकते हैं, किम क्या कहा जाए, च भी आशीष अन्न आशीर्वाद राति ये प्रदान करते हैं, अपि भी देहम शरीर को, अव्ययम आध्यात्मिक करोतु आशीष दे में मुझको, अदभ्रदय अत्यधिक दयालु भगवान, विमोक्षणम वर्तमान संकट से तथा भौतिक जगत से मुक्ष। श्लोकोत्तर अनुवाद तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, ये उनसे अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर अन्य आशीर्वाद के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु है, ये मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दे। आप लोग क्या बोलिए, बहुत अच्छा अनुवाद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु है। ये मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दे। सुबह तात्पर्य, इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी अर्थात भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं, कुछ सकामी अर्थात अधिक से अधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने में पढ़ने के इच्छुक तथा कुछ धर्म अर्थ काम एवं अंततः मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार देहि तीव्रेन भक्ति योगेन जजित पुरुषम परम। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहते हो या न चाहता हो या अंततः मोक्ष चाहता हो, उसे श्री भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्ति होगी। श्री भगवान श्री चैतन्य अत्यंत भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है। जे यथा मम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। श्री भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीवों को मनोवांछित वस्तु देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, श्री भगवान सबके हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित जंत्र पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। श्री भगवान हर एक को अपनी महत्वाकांक्षी कांखा की पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता के साम्राज्य से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है उसे वे निराश नहीं करते। क्योंकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से या यूं कहे कि भौतिकवादी जीवन के वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की थी, तो ये उसकी इच्छा पूर्ति क्यों ना करते। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदीशतारिणि मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंध जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर मम्ब मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यदविन्दारण्यकल्पद्रुमाधौ श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंद देव्यौ पृष्ठालिभि सेव्यमाने स्मरामि। श्रीमान रास रसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षन वेणु शनैर्गोपीर गोपीनाथ श्रियस्तु न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमिहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमिहं न जाने। हरे कृष्ण। अमल प्रश्न भागवतम की ये श्रीमद भागवतम है, ये कलिहत अज्ञ जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिए है। ये श्रीमद भागवत का उदय कब हुआ? जी कृष्ण सधाम उपगति धर्म गेनादि दिभीषः कलौ नश्च दिशामीश पुरा नरक दिनादितः। कृष्ण जब धर्म ज्ञान का साथ अपने धाम में लौट गए चले गए, उसी समय यही कलि के अज्ञान पूर्ण अंधकार पूर्ण जगत में जीव को दृष्टि प्रदान करने के लिए उनको सहायता करने के लिए उसी समय इस श्रीमद् भागवत का उदय हुआ या प्रकट हुआ है। इसलिए ये भागवत एक कलि जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए बोलते उद्धव जी बताते हैं कि तेन यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हो रिहि सेवनाथ सवनाथ पाठात दर्शनाथ पापनाशिनी। ये श्रीमद् भागवतम है, इसको सेवन करने से दर्शन करने से श्रवन करने से एवं कि दर्शन करने से भी पाप नाश होता है। क्यों ना ये है प्रत्यक्ष वर्तते तो हरि ही हरि का सदैव प्रत्यक्ष वाग्मयी मूर्ति स्वरूप है। जैसे श्रीमद् जैसे कृष्ण का भगवान का हम लोग दर्शन करने से हम लोग पाप नाश होते हैं, अज्ञान का नाश होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को यदि श्रवन करते हैं पठन पठन करते हैं दर्शन भी करते हैं उसको अरे मैंने अज्ञान का नाश हो जाते हैं एवं पुण्य का उदय होता है। इसलिए चतुर कुमार बताते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सदा सेव्य हमेशा श्रवन करना चाहिए, उसको पठन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत सदा सभ्य श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रे न हरिश्चित्तम समाश्रय, जिसका श्रवण का मात्र से ही श्री हरि भगवान हम लोग का हृदय में बैठ जाते समाहित हो जाते। जब श्री भगवान हमें हृदय में उदित हो जाएगा तो हम लोग का और क्या कहा जाए, हम लोग कोई अज्ञान नहीं रहेगा, हम लोग को सारी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगा। सनातन गोस्वामी ये भागवत का महात्म में बताते हैं सर्वशास्त्राब्धि पीयूषो सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकैक दिक्पद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिधान्त दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। भागवत क्या है? सर्व शास्त्राब्धि पीयूषो, जिस समुद्र भी सही शास्त्र है उसका मंथन भी अमृत स्वरूप है श्रीमद् भागवतम है। सर्ववेदिक सत्फल, जे वेद का जे फल स्वरूप है, जैसे कि आम वृक्ष होता है, इसका हम लोग क्या चाहते हैं, फल चाहते हैं आम। इस प्रकार सारी वेदों का फल स्वरूप है ये श्रीमद भागवतम है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सारी पारमार्थिक सिद्धांतों का मानने मोनी स्वरूप है श्रीमद भागवतम। और सर्वलोकिक दिक्पद, समस्त लोगों का शुभ दृष्टि प्रदान करने वाला है, उनका दिशा प्रदान करने वाला है। सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभु, जे भक्त भागवत का रसिक जनों का ये प्राण स्वरूप है श्रीमद भागवतम है। कलिद्धांत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित, ये अज्ञान रूपी तमसाच्छन्न कलि में आलोक प्रदान करने के लिए सूर्य को समय उदित हुआ है, ये श्री कृष्ण का परिवर्तित रूप है, डायरेक्ट श्री कृष्ण है, वाग्मय मूर्ति है। इसलिए हम लोग श्रीमद भागवतम को हम लोग को मानने भागवत हम लोग का संगी बंधु हिसाब में ग्रहण करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी इसका आगे बताते हैं, मद एक बंध मत संगीन मद गुरु मन महाधन मत निस्तारक मद भाग्यो मदानंद नमस्तुते। सनातन गोस्वामी किस प्रकार भागवत को ग्रहण किया है उसी भाव में कहने के, मद एक बंधो मत संगीन, हे मेरे एकमात्र बंधु है, भागवत को बताते, हे मेरे एकमात्र संगी है, मद गुरु मन महाधनो, हे मेरा गुरु है, हे मेरा महाधन है, मद भाग्य मन निस्तारक मद भाग्यो, हे मेरे निस्तारक है, मुक्ति प्रदान करने वाले संसार जगत से, और मेरे भाग्य है, मदानंद नमस्तुते, ये मेरा आनंद स्वरूप है, आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसी प्रकार भागवत को ग्रहण करेगा, सर्वस्वरूप में ग्रहण करेगा, उसी को ही भागवत भागवत कृपा से उनका भागवत ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान स्वरूप है। जैसे भगवान को भी पूर्ण रूप में जान नहीं सकते है, समझ नहीं सकते, उसी प्रकार भागवत को भी कोई ठीक से समझ नहीं सकते, जब भागवत का कृपा से ही भागवत समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग भागवत जब अपना आत्मवत समझ के हम लोग अध्ययन पठन करेंगे तब हम लोग इसका माने ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में पांच विषय वस्तु जानते हैं कि ना, ईश्वर जीव प्रकृति काल एवं कर्म, उसी प्रकार श्रीमद भागवतम का दस विषय वस्तु है, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतयो मन्मन्तरेषु कथा निरध मुक्तिराश्रय। स्वर्ग माने ब्रह्मांड का सृष्टि, भगवान का सृष्टि, विसर्ग गौण सृष्टि, ब्रह्म द्वारा सृष्टि, स्थान लोक लोकांतर का वर्णन, पोषणम भगवान द्वारा संरक्षण व पालन रक्षा, उति माने कर्म वासना, मन्मन्तर मनु का आश्रय वर्णन है, ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, दस वर्णन हुआ है। और अभी जो चला जाए अष्टम स्कंध, अष्टम से मन्मन्तर माने मनुओं का वर्णन है, मनु का शासन का व्यवस्था का वर्णन हुआ है। और जिस प्रकार भगवद गीता में कितना है, 18 अध्याय 700 श्लोक, इसी प्रकार श्रीमद भागवतम 12 स्कंध, द्वादश स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक संबंधित है। अष्टम स्कंध सुखदेव गोस्वामी पहले ही मनु का वर्णन कर चुके हैं चतुर्थ स्कंध में, एवं सप्तम स्कंध में भी प्रसंग अनुसार मरीचि का वर्णन एवं अमृतमयी प्रहलाद महाराज का चरितावली वर्णन कर चुके हैं। सुखदेव परीक्षित महाराज ये श्रवण करके परम तृप्त हो चुके हैं, लेकिन भगवत कथा हरि कथा ऐसे ही महात्म है, जितना श्रवण करेगा उसका तृष्णा और बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। मतलब होती कि तृष्णा हुआ पानी पी लिए प्यास खत्म हो जाते हैं, लेकिन हरि कथा का तृष्णा ये पूरा विलक्षण है, जितना पान करेगा उतना प्यास बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार परीक्षित महाराज पहले ही साम्भव मुनों का वर्णन श्रवण करके प्रहलाद महाराज का अमृतमयी कथा श्रवण करके तृप्त हो गए, लेकिन और लालसा जागृत हुआ हरि कथा श्रवण करने के लिए। तब अष्टम स्कंध शुरुआत में ही जे परमहंस चूड़ामणि शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर चुके हैं, जे मैं तो आप तो सुना है साम्भव मुनों का वर्णन कथा, और आगे अन्यान्य मुनों का वर्णन कीजिए, एवं मुनों का शासन काल में भगवान का भविष्य भूत एवं वर्तमान में क्या लीला किया है वो भी वर्णन कीजिए। जब इस प्रकार परीक्षित महाराज अपना प्रार्थना जाना इच्छा प्रकट किया, तब सुखदेव गोस्वामी आगे 24 अध्याय में अलग अलग मनुओं का सब वर्णन करते हैं, उसी प्रसंग से भगवान का गजेंद्र मोक्षण लीला और समुद्र मंथन लीला और वामन अवतार मत्स्य अवतार आदि लीलाएं वर्णन करते हैं। तो पहला मनुओं का वर्णन कि साम्भव मनु, पहला मनु इसका वर्णन किए हैं, इसका द्वितीय मनु है सरोचिष मनु, इसका भी वर्णन किया अच्छा तरीका से, तृतीय मनु है प्रियव्रत पुत्र तामस, इसका पियवत पुत्र उत्तम, उत्तम का वर्णन किया है। वह चतुर्थम मनु है चे उत्तम का पुत्र तामस। तामस का वंश में ही, ये चतुर्थ मनु का वंश में ही हरि मेधस का उरस से, हरिणी का गर्भ से भगवान हरि रूप में प्रकट हुआ है। यही हरि ने ही जे गजेंद्र को ग्राहो से मुक्त किया है, गजेंद्र मोक्ष लीला। जब ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने कहा है तब परीक्षित महाराज वो उत्साहित हुए हैं, बोला तले हम मेरे को अभी गजेंद्र मोक्ष लीला विस्तार पूर्वक मेरे को सुनाइए। तब सुख परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने पद पर तीन अध्याय में, दूसरा तीसरा एवं चौथा, तीन अध्याय में गजेंद्र मोक्ष लीला वर्णन करते हैं। इस प्रसंग में पहले हम लोग तीसरा दूसरा अध्याय में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने गजेंद्र मोक्ष लीला का पहले शुरुआत बने कहते हैं, ये क्षीर समुद्र बेष्टित एक सुउच्च 10,000 योजन मैंने 80,000 मील एक पर्वत है, जिसका नाम है क्या, ना त्रिकुट पर्वत। ये पर्वत के तलहाटी में बहुत सुंदर मनोरम एक उद्यान है, ये उद्यान वरुण देव ने मैंने तैयार किए थे। उद्यान का नाम क्या है ना, ऋतुमत, मैंने समस्त ऋतु में सबको मोहने वाले है, इतना सुंदर उद्यान है। और उस उद्यान में एक बहुत स्वच्छ निर्मल जल विशिष्ट सरोवर था। इस सरोवर में एक दिन गजेंद्र ने अपना संगी साथी और दलबल लेकर नो की जल विहार करने के लिए वहां पे आए हैं। अब लोग सुने हैं जल विहार जब करते हैं उसमें जो मदमत्त हो जाते हैं, अपना सुध-बुध खो बैठते हैं। हम लोग पहले सुन चुके हैं जो नलकुबे मुनिग्रीप के समय में वो लोग भी जल विहार करते थे अपना सहेली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ। उसमें क्या था, मोती भ्रष्ट हो गए होके मतलब नारद मुनि का शामिल क्या गति समझते जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी गजेंद्र अपना पत्नियां बच्चों के साथ जल विहार करने में इतना मदमस्त हो गए जो सुध बुद्धि खो बैठे। इसी कारण क्या हुआ, जल में इतना हलचल मच गए जे जल में रहने वाले जे जीव है वो लोग परेशान हो गए। उसी समय उसमें रहने वाले जे मगरमच्छ जो कुमीर ग्राह उनका जे सबसे शक्तिशाली सरदार है वो बहुत बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ मोजा, क्योंकि गजेंद्र ने इतना शक्तिशाली थे उसको देख के सब पशु जानवर सब भाग जाते थे। स्वाभाविक जो शक्तिशाली होता है ईशाली तो सब लोग होता ही है, जो मौका मिलने से मौका देख के चौका, मौका मिलने से उसको हम लोग शास्त्र करेंगे। उसी प्रकार मगरमच्छ भी मैंने ताक में थे, अभी आज ऐसे ही हुआ वो बहुत परेशान, ठीक है आज मैं लास्ट चांस देख लेता हूँ उसका एक दिन की मेरा एक दिन। तो अब ग्राहो ने क्या किया, अपना पूरा बल कस के गजेंद्र का पैरों में झपट मारा, पकड़ लिए। तो शुरू हो गए दोनों का घमासान युद्ध। युद्ध हुआ ऐसे ही हुआ 1,000 साल तक युद्ध हुआ। ये युद्ध का फलस्वरूप क्या हुआ, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा और कोई मरा भी नहीं है। गजेंद्र भी नहीं मरा और मगरमच्छ भी नहीं मरा, कोई हारा भी नहीं है। लेकिन इसमें एक क्या हुआ ना, गजेंद्र ने, गजेंद्र तो माने स्थल का जीव है, लेकिन 1,000 साल तक जब जल में रहा उसका क्या हाल तो समझ सकते हैं, क्योंकि जल का जीव नहीं है, उसका शक्ति क्षीण होते रहा और भूखा प्यासा है, कुछ तो खाना मिला ही नहीं, और पानी है लेकिन कैसे पिएगा, वो तो उसमें लड़ाई कर रहे पानी पीने का मौका थोड़ी है। इसलिए भूखा प्यासा में उसका धीरे धीरे शारीरिक बल, दैहिक बल, मानसिक बल कम होते रहा। और उस तरफ ग्राहक का मगरमच्छ से क्या हुआ, वो तो जल का जीव है, वो तो अपना ही स्थल है, वो तो वहाँ रहते ही थे सरोवर में, वो तो अपना ही घर है बोल सकते, उसका शक्ति धीरे बढ़ते रहा, मनोबल सब बढ़ते रहा युद्ध करने के लिए। और वो साथ साथ गजेंद्र का खून भी पी रहा था, उसका तो ताकत मिल ही रहा था, खाना मिल ही रहा था। इसी स्थिति में जब गजेंद्र ने देखा जे मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा मुक्ति करने का वाले और कोई नहीं है, क्योंकि उनका सब छोड़ चुके, आप पहले सुने मैं पीछे से नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग चले गए, पति पत्नी बच्चे जो सहायक सब चले गए। तब वो क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रही। तब उसका याद आया जी जे मुक्तिदाता मुकुंद जो समझ रक्षा करने वाले हरि यही मेरे को रक्षा कर सकते हैं, यही सोच के वो भगवान का स्वर्णपन्न हुआ एवं कुछ माने तात्विक एवं वैज्ञानिक ढंग से बहुत मार्मिक भगवान का स्तप किया। यहाँ पे प्रश्न उठ सकते जो गजेंद्र ये तो माने जड़ बुद्धि संपन्न एवं पशु जोनी है, वो कैसे जे इसी स्थिति में कैसे भगवान को याद कर सका, इसके एक संभव कैसे प्रश्न उठ ही सकते हैं। इसके संशय दूर करने के लिए पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने बता चुके हैं, प्राग जन्मनि अनुसुक्षितम, इसका अर्थ है जे उसका इसी जन्मलब्ध ये ज्ञान नहीं है। इसका कौन सा है, ना पूर्व जन्म में जब उन्होंने जब इंद्रदुम्न राजा थे उसी समय उन्होंने भगवान का बहुत आराधना करते थे, तपस्या करते थे, उसी समय इस मंत्र को जपा किया करते थे, उसी अभी याद आया है। हम लोग देखते हैं स्वाभाविक इस संसार में भी कोई कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग भी बचपन से बहुत शास्त्रज्ञ होता है, संगीत में बहुत पारदर्शी हो जाते हैं, अन्य अन्य कला में इतना निपुण होते हैं अस्वाभाविक, कोई बहुत दिन तक प्रयास करने ऐसी कर नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे कर लेते, वो कैसे किया ना, इसका और कुछ नहीं है, उसका एक ही क्या है ना, मृत्युमपि अनुवर्तते विद्या, ये विद्या मृत व्यक्ति को भी अनुसरण करते हैं, उनका साथ साथ जाते हैं विद्या। उसी फलस्वरूप गजेंद्र जी पहले जन्म में जे इंद्रदुम्न राजा थे उसी समय जे वो भगवान का स्तव स्तुति करते थे, क्या करते थे, उसी फलस्वरूप उसका अभी वो याद आ गया, क्योंकि वो जो विद्या तो जन्म जन्म से चलते जाते रहते हैं, उसी प्रकार आया है। मतलब हो सकते वो तो बहुत लोग इस प्रकार कैसे इसमें आ गया है, क्योंकि गजेंद्र ने जब इंद्रदुम्न राजा थे उसी समय वो तपस्या करते थे, एवं एक दिन उनका गुरु अगस्त मुनि ने वहां आ पहुंचा, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, अपना भजन साधन में मस्त रहा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुदेव आए बैठे, मैं तो भजन कर लेता हूँ, इसका बाद मैं गुरु का सत्कार करूंगा। उनका मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ नहीं पाया, उसी से गुरु ने क्रोधित हो गया, जो इतना ही ज्ञान नहीं है, जो पहले गुरु को सेवा किया जाते है। जैसे हम लोग भी जब मायापुर में पूजा ट्रेनिंग किए थे उसे जनेश प्रभु ये बताए थे, जे जब आप कोई घर में पूजा कर रहे अर्चन कर रहे उसी समय कोई परम शिरामणि कोई महात्मा आ गए है, आपका गुरुदेव आ गए है, उस समय आपको पूजा छोड़ के पहले उस संत को सेवा करना चाहिए, उसे पहले बैठाइए, बैठा के बोलिए बैठे सत्कार कीजिए, इसका बोलिए संत जी वा गुरुदेव मैं अभी भगवान का पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या, कभी भक्त कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं भगवान सेवा छोड़ के मेरा सेवा करो, बोलेगा आप जल्दी पहले पूरा कर लीजिए, मतलब आपका दोनों दिक मैंने ये हो गया संभाल लिया आप, और देखिए सत्कार भी हो गया, अभी भगवान का सेवा भी हो जाएगा। लेकिन जो मंदिर में है, मंदिर में तो दूसरा भक्त रहते ही है, वो संभाल लेते, जो घर में विशेषकर घर में, तो घर में कोई नहीं है, आप अकेला है, कोई संत आए है, आप बोले संत आप बैठिए मैं तो भगवान पूजा कर लेते, ऐसे ही नहीं है, पहले संत को सत्कार करना है। ये हर ये भागवत शास्त्र क्या है, सब हम लोग की शिक्षा है, सब हम लोग को शिक्षा देने के लिए किया है, इसलिए यहाँ से हमें शिक्षा मिलता है क्या, जो पहले हम लोग को संत जन को पहले सेवा करना चाहिए, भगवान का सेवा होने से पहले सेवा से भगवत सेवा से संतों का सेवा बड़ा है, क्योंकि संतों का हृदय में भगवान हमेशा बैठते, एवं भक्तों का भगवान का प्रिय है भक्त होता है, इसलिए भगवान क्या चाहते हैं जी मेरा भक्तों का अभ्यर्थना पहले हो, लेकिन भक्त नहीं चाहते, इसलिए भक्त बोले नहीं नहीं आप जाके पहले भगवान का सेवा कीजिए। लेकिन यहाँ पे गजेंद्र का इंदु द्वारा के मिसअंडरस्टैंड हो गया, वो अपराध कर डाला, तो अगस्त मुनि ने साप दे डाला, जी तुम तो हाथी का तरह बुद्धि है, जड़ तो बैठा है, तुम हाथी बन जा। तब गजेंद्र का तब होश आया, गजेंद्र बोली इसका इंद्र होश आया है, मैं तो गलती कर दिया है, लेकिन क्या करे, जे धनुष से निकला हुआ बाण और साधु संतों का मुख से निकला हुआ वाणी तो कभी वापस आ नहीं सकते हैं। तो गजेंद्र ने उसको भगवान का आशीर्वाद समझ, कृपा समझ करके उन्होंने इसको स्वीकार कर लिए। ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी इसे स्तब में बताते हैं, तत्तेनुकंपां सुसुमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हिदवाग वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो आपने किया हुआ कर्म के अच्छा बुरा फल को निर्विकार रूप से किसी दोषारोप नहीं देते हुए खुद भोगते हैं, एवं भगवान को कृपा का प्रतीक्षा करते हुए काय मनो वाक्य से भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते जीते रहता है, वो मुक्ति के अधिकारी उस प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार एक पिता के सत्पुत्र उनका संपूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। उसी प्रकार गजेंद्र ने जो इंदु राजा थे वो कोई प्रतिकार किया नहीं, बोला है मेरे गलती किया है, कोई बात नहीं भगवान की कृपा होगा हो जाएगा। उसी प्रकार वो अभी गजो शरीर में वो भगवान का माने कृपा का प्रतीक्षा करते रहा, इसी फलस्वरूप उसको भगवान का कृपा से ही उसका अभी स्तुति याद आ गया, ना स्तुति थोड़ी याद आते, ऐसे तो कितना स्तुति सब करते हैं याद तो नहीं, किंतु ऐसे जे बोलते जे जो सत्पुत्र होता है वो पिता का संपत्ति मिलता है, कोई जो पिता का कुपुत्र होता है, पिता किसी को त्याज्य कर दिया, उस संपत्ति नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार जो भक्त भगवान का सहनापन्न के रहते भजन करते हैं, उसको ही भगवान का कृपा से उसका सारी कुछ ये मुक्ति मिल जाते हैं। उसी फलस्वरूप एक गजेंद्र का अभी ये कुछ विज्ञान सम्मत में तात्विक स्तुति याद आ गया है, जब याद आया है। लेकिन भगवान गजेंद्र ने पहले स्तुति बताया, ओम नमो भगवती तस्मयी, भगवान को पहले प्रणाम करने से ही प्रणाम करके भगवान स्तुति शुरू किया है। लेकिन ये भी गजेंद्र ने बताया है स्तुति में, जे मेरा अभी स्थिति बहुत विकट स्थिति है, बहुत विपदग्रस्त स्थिति है, जे मेरे को मेरा पैरों में ग्राहों ने पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं ठीक से आपका स्तुति कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक से याद कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा जितना सामर्थ्य है मैं आपको कर रहा हूँ। इसी प्रकार बहुत अच्छी तरह से गजेंद्र ने 28 श्लोक में स्तुति किया है। आज 18 नंबर स्तुति, श्लोक संख्या 19 स्तुति, गजेंद्र का स्तुति में 18 नंबर स्तुति है। उस स्तुति में गजेंद्र ने क्या बोल रहे, यम धर्म कामार्थम विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिम आप्नुवन्ति किम् चाशिशरात्वपि देहमव्ययम् करोतुमिदाब्रदयो विमोक्षणम्। धर्मार्थ काम विमुक्त कामा यम भजन्त इष्टाम गतिम आप्नुवन्ति किम् चाशिशो देहमव्ययम् रात्वपि अधब्रदयो मे विमोक्षणम् करोतु। माने बोल रहे कि धर्मार्थ काम विमुक्त कामा, जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चार पुरुषार्थों को कामना करते हैं, वो लोग यम माने जिस भगवंतम पुरुषम भगवान को भजंत उपा आराधयंतम आराधना करते हैं, आराधना करके इष्टान गतिम आप इष्टान माने अपनी स अभिप्सितम आपने इच्छित कामना युक्त गतिम माने धर्मादि फलम जो वस्तु प्राप्तवंती माने आपनुवंती प्राप्तवंती प्राप्त कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि किम चाश रात्वपि, जब आपने अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते, छोटी मोटी जो भगवान का आशीर्वाद तो आपने ही प्राप्त हो जाते हैं, ओपि इतना ही नहीं है, देहम अव्ययम रात्वपि, जे अविनाशी भगवत जैसे अविनाशी पार्श्वदत्त शरीर प्राप्त कर लेता है, जो ध्रुव महाराज प्राप्त किए थे वही प्राप्त कर लेता है। ताले वो अधब्रदय जे वो भगवान परम कृपालु भगवान ने मे मन मुझको विमोक्षणम करो तू, यही वर्तमान संकट से और यही संसार बंधन से मेरे को मुक्त कीजिए। इस प्रकार गजेंद्र ने बहुत अच्छा स्तुति किया है। गजेंद्र का स्थिति जैसे हम लोग का भी स्थिति सबका ऐसे ही है, गजेंद्र ने मगरमच्छ ने पकड़ा था और हम लोग के भी सबको ये मृत्यु रूपी काल ने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। हम लोग का भी ऐसी विषम स्थिति है, हम लोग की ऐसी भगवान का प्रार्थना करना चाहिए जी हम लोग की आप कृपा कीजिए, कृपा करके यही जे मृत्यु रूपी काल से मगरमास से और इस संसार बंधन से हम लोग से मुक्त कीजिए। हम लोग से भगवान का गजेंद्र का तरह भगवान से प्रार्थना करेंगे तब हम लोग इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भागवत से हम लोग ऐसी शिक्षा मिलते हैं। प्रभुपाद इसमें खूब सुंदर तात्पर्य में बताते हैं जे अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजत पुरुषम परम। जे अकाम जो कामना रहित हो, ये कामना युक्त हो या मोक्ष कामी हो, वो लोग को क्या करना चाहिए ना, भगवान को पूजा करना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए तीव्रता के साथ। अकाम का अर्थ क्या है, अकाम मैंने कामना शून्य या कामना रहित, जो लोग का शुद्ध कामना होगा अपने भजनतम अपने भजनीय जे परमेश्वर भगवान को जे कामना करते है, भगवान का सेवा के लिए कामना करते है, भगवान का संतुष्ट कामना करते है, अपना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान को इंद्र तृप्ति कामना करते हैं, उसको बोलते अकाम अकामी, उसको बोलते अकाम। और सर्वकाम, सर्वकाम का अर्थ है जी बोलते जत इच्छा जात कामना, माने वो अन्न अबलिष्टा अलग अलग कामना करते हैं। जी सर्व का अर्थ है विष्णु, जहां पे विष्णु का कोई धारणा नहीं है वहां पे क्या होता है ना, हम लोग का जे खंडित वस्तु जे अनित्य वस्तु की कामना करते हैं, ये फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग का मन में उसको भोग करने का प्रवृत्ति आ जाते हैं, इसलिए तरह तरह से हमें कामना उदित होता है, उसको बोलते हैं सर्व काम अलग अलग कामना है। लेकिन जब इस सर्व का अर्थ जब विष्णु को हम लोग जब केंद्रित करेंगे विषय वस्तु करेंगे तब तो हम लोग इतर जो कामना वो हम लोग का हृदय में नहीं रहेगा, तो हम लोग का कामना एकमात्र क्या होगा ना, भगवान को संतुष्टि करना, तो अब ये हो जाएगा অকাম, আর যব ইতর বস্তু কামনা করে ও হয়ে যায় সর্বকাম। বলছে অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারিত, মোক্ষকাম, মোক্ষকাম অর্থ কি আছে, মুক্তি, মুক্তি কি ইচ্ছুক। তো ইহা পে তো সর্বকাম আন্দার তো মোক্ষকাম আ গিয়া হে, তো ইহা পে মোক্ষকাম আলাগ সে কিউ বাতায় হে না, ইসলিয়ে শ্লোক মে আলাগ সে বাতায় গিয়া হে যে মোক্ষকাম যে যে লোক মুক্তি কে ইচ্ছুক জ্ঞানী লোক কো এ বাতানে কে লিয়ে বা এ সামজানে কে লিয়ে যে আপ লোক মুক্তি কে মানে ও লোক কে বলতে যে হাম লোক কা কোই কামনা নহি হে, যে লোক মোক্ষ মে বলতে হাম লোক কোই কামনা নহি, হাম লোক কোই কামনা নহি করতে, হাম লোক ইন্দ্র তৃপ্তি কে কামনা নহি করতে হে। লেকিন ইহা পে সুত গোস্বামী নে বাতা রে যে মোক্ষ কাম আলাগ সে বলকে ও লোক কো ইঙ্গিত কর রে যে আপ লোক সবচেয়ে সর্বকামী সে ভি আপ লোক অর কামনা হে, আপ লোক কা স কামত্ব হে, কাম কিসকে কহতে হে যে আপনি দুঃখ কা নিবৃত্তি আর সুখ কা প্রাপ্তি সো কাম কাম কহতে, যে আপনার দুঃখ চলা যায় আমলোক দূসরে প্রতি কামনা কি করতে হো যে উসে মেরে কো সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়, আমার যে দুঃখ হে ও ঘাট যায়। উসি প্রকার যে দেখি যে মোক্ষকামীরা কিতনা অধিক সবচেয়ে মানে কে বলতে কামনাযুক্ত হতে হে, যে সামান্য যে সর্বকামী গান্ধার যে লোক সামান্য মনুষ্য হে ও লোক কে কে যে সামান্য ছোটি মোটি দুঃখ, মেরা বিমার হো গিয়া হে, খাওয়া নাই মিল রে হে, বস্ত্র নাই, ইসকে লিয়ে কই দেবদেবী কাছে যাতে হে বা কিছু কাজ চাহাতে হে কামনা করতে হে বা ইসে হো অর থা উপর যায় তো যে অনিত্য যে স্বর্গ সুখ কে লিয়ে কামনা করতে উসকে লিয়ে বিভিন্ন তারা তারা কে উপায় ঢুঁড়তে হে। আর মোক্ষকামী কে করতে হে এই সংসার দুঃখ সে নিবৃত্ত হোনা চাহাতে, এই সংসার মে কই দুঃখ না না হো অর কে হয় না ব্রহ্ম সুখ যে অনন্ত সুখ উসকো চাহাতে হে, ও লোক কে ভগবান কে নেই আপনা খুদ সুখ কে লিয়ে, ও লোক বলতে যে আমারা এই সংসার সে এইসব দুঃখ টুক মানে আছে লাগতে এইসব সংসার মে দুঃখিয়ে এসে সে সংসার সে দুঃখ সে নিবৃত্তি আর যে ব্রহ্মানন্দ সুখ কা প্রাপ্তি, তা কে হওয়া এ সবচেয়ে যারা আপনা সুখ চাতে হে না, সামান্য ছোট জীব কে যে সামান্য যে মেরে বিমার ঠিক হয়ে যায় এ সুখ চাতে, এ সুখ চাতে হে ও চাতে কি সংসার সেই দুঃখ চলা যায় মেরা, ইসলে ও লোক সবচেয়ে মানে কে বলতে কামনাযুক্ত। ইসকো বাতানে গেলে ইহাবে বলা যে মোক্ষকামী আলাগ সে সর্বকামী সে মোক্ষ সঙ্গে আলাগ সে নিকাল দিয়ে যাতে সমঝা যায় যে এ সবচেয়ে কামনাযুক্ত হে, যে অকাম সর্বকাম বা মোক্ষকাম উদারদি, উদারদি মতলব কে হয় যে উদার মানে সুবুদ্ধি সম্পন্ন, যে সুবুদ্ধি সম্পন্ন কিসকে বলতে হয় না যে লোক ভগবান কা আরাধনা করতে হে, যে মোক্ষকামী হো সর্বকামী হো বা অকামী হো যদি ও যদি ভগবান কা আরাধনা করতে তা উসকো কে বলতে না উসকো বুদ্ধি সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয় সুবুদ্ধি, আর ইসকা বিপরীত যে ভগবান কা আশা নাই করতে উসকো বলতে দুর্বুদ্ধি, তাহলে কই কিছু কামনা হ্যাঁ লেকিন ও ভগবান কে নাই যাতে কিছু দেব দেবী কা পাস কই রাজা কা পাস কই বাবা কা পাস যাতে হে, ইসকে বলতে হয় কে না দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন, ইস বলতে যে উদারধি যে এসব বুদ্ধিমান সম্পন্ন হয় সুবুদ্ধি সম্পন্ন তীব্রেন ভক্তি যোগেন যদেত পুরুষম পরম, যে তীব্রেন তীব্র ভক্তিকে সাথ ভগবান কা আরাধনা করা চাই, তীব্রেন অর্থ হে যে তীব্রেন মানে খুব কে বলতে যে প্রখরতা কা সাথ জিস প্রকার যে জ্ঞান জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম, জ্ঞান এবং কর্ম সে রহিত হকর জিস প্রকার যে আকাশ মে স্বচ্ছ আকাশ মে যে মেঘ রহিত আকাশ মে সূর্য কা কিরণ পড়তে তো কিতনা প্রখর সূর্য কা তাপ লাগতে হ্যাঁ, উসি প্রকার যা ভক্তি করে গা এই যে ভক্তি ভিন্ন যে জ্ঞান কর্ম ইসে রহিত হকর যা ভক্তি করেন গে ও হোকা গা তীব্র ভক্তি, ইস বলতে তীব্রেন ভক্তি উসি প্রকার যে একমাত্র কেবলা ভক্তি জ্ঞান জ্ঞান কর্ম রহিত হকর ভক্তি করা চাই, তীব্র ন ভক্তি যোগেন যথার্থ পুরুষম্পরম চাই। ইসকো চৈত চৈতামিত মে বহু আচ্ছা তারিখ সে সামজা হ্যাঁ যে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয় গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়, বাতাতে হ্যাঁ যে ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী যে লোক মানে ভোগ কি ইচ্ছা হো ইয়া মুক্তি কি ইচ্ছা হো ইয়া সিদ্ধি বি কামনা হো উসকো যদি সুবুদ্ধি হয় যদি বুদ্ধি যদি মানে সুবুদ্ধি হতা হ্যাঁ তব গাঢ় ভক্তি যোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়, মানে গাঢ় ভক্তি যোগ সে তীব্র ভক্তি সে কৃষ্ণকে ভজনা করতে হ্যাঁ, অন্নকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন সচরণ, যে অন্নকামী হে যে সর্বকামী হে ও যদি কৃষ্ণ কা ভজন করতে হে ও নাহি চাতে হয়ে ভি কৃষ্ণ উসকো আপনা চরণ দেতা হে মানে আপনা ভক্তি প্রদান করতে হে আপনা কৃপা প্রদান করতে হে, কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে, যে কাম কেলে আপনা কামনা পূর্তি কে লিয়ে লোক কৃষ্ণ কা ভজন করতে হে যো লেকিন ও কৃষ্ণ কা ভজন করতে করতে কৃষ্ণ ভক্তি মে ইতনা মদমস্ত হয়ে যাতে হে ও কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে। আপনা কামনা কো ছোড় কর ভগবান কা ভক্ত হোনে কে দাস হোনে কে অভিলাষ করতে প্রার্থনা করতে হ্যাঁ। আগে বতাতে হ্যাঁ, বুদ্ধিমান অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয় নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণরে ভজয়। বুদ্ধিমান অর্থে যদি বিচার হতা হ্যাঁ, মানে যদি বিচার শুধু বুদ্ধিমান সে নাই হোগা, বহু লোক তো বুদ্ধিমান হ্যাঁ, বুদ্ধিমান কে কথা আপনা কামনা পূর্তি কে লিয়ে কোই দেবদেব যাতে হ্যাঁ, বুদ্ধি করে মানে এই কামনা ইস দেব কে পাস যাউঙ্গা নেই। যে বিচারবান হতা হ্যাঁ, বিচারজ্ঞ হতা হ্যাঁ, ও ক্যা করতে হ্যাঁ না, ও নিজ কাম লাগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়। যে বুদ্ধিমান বিচারবান হতা হ্যাঁ, ও অন্য কিসিকে পাস না যাকর কৃষ্ণকে ভজনা করতে হ্যাঁ। ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল, সব ফল দয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। ভক্তিকে বিনা দুসরা সাধন ফল দেনাই শেখতে হ্যাঁ। আপ কর্মযোগ বতাইয়ে জ্ঞান যোগ তারপরে ধ্যান যোগ সব ভক্তিকে আশ্রয় করকেই ও লোক ফল মিলেগা। আমরা দেখতে হ্যাঁ মায়াবাদী হোক কুচ ভি হোক ও লোক থোড়া বহুত ভজন করতে হ্যাঁ, আপনা হিসাব সে কীর্তন করতে আপনা হিসাব সে গানা হতা হ্যাঁ, কিউ করতে না জানতে হ্যাঁ যে ভক্তিকে বিনা কই ফল নাই দে সকতে হ্যাঁ। আর ভক্তি সবকো ফল দেতা হ্যাঁ, লেকিন ভক্তি স্বতন্ত্র হ্যাঁ, ভক্তি কিসি কা সাহারা নাই লেতে হ্যাঁ, বলতে কি সর্বফল দয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। অজাগল স্তেনন্যায় অন্য সাধন অতএব হরি বজে বুদ্ধিমান জন। বলতে অজাগল স্তনের ন্যায় যিস প্রকার বকরি কা গলে মে স্তন কা সদৃশ এক মাংস পিণ্ড লটকতে রেতে হ্যাঁ, লেকিন উসমে কি আমাকে দুধ মিলেগা নাই, মিলনে বলে দুধ কাহা মিলনে বলা স্তন মে মিলনে বলা হ্যাঁ। উসি প্রকার যে অন্যান্য সাধন হ্যাঁ, যে জ্ঞান মার্গ যোগ মার্গ সিদ্ধি মার্গ আলাদা আলাদা যে সাধন হ্যাঁ, এ সব কে হতে না অজাগল স্তন কা নয়, ও স্বতন্ত্র রূপ সে আপকো ফল নাই দে সকতে হ্যাঁ, ভক্তি কো সাহারা লেকেই আপকো ফল দেগা। যা ভক্তি কা সাল কা ফল দেগা তো বুদ্ধিমান কিউ ও সব করেগা, ভক্তি কে আপনাইগা সিধে ওই বাতা রে। উদার মহতি যার সর্বোত্তম বুদ্ধি নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি। যে যো লোক বুদ্ধিমান হতা হ্যাঁ উদার হতা হ্যাঁ, ও লোক ক্যা করতে হ্যাঁ আলাগ আলাগ কামনা লেকর ভগবান কো ভজনা করতে হ্যাঁ, লেকিন ও ক্যা হতে ভজনা করতে কি ভক্তি কা সফলতা প্রাপ্ত কর লেতে সিদ্ধি হয়ে যাতে হ্যাঁ। ভক্তির প্রভাবে সই কাম ছাড়া ইয়া কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া। ভক্তি কা স্বভাব এসেই হে লক্ষণ এসেই হে যে আপ কিসি ভি কামনা কো লেকে ভক্তি মানে ভক্তি কিউ না করে, ভক্তি কা রস মে আপ ইতনা মাতাল হয়ে যায়েঙ্গে যে আপ যে আপনার যে কামনা ছড়ে দেঙ্গে দেখে আপ ভক্তি করতে লাগেঙ্গে। জিস পর আপ দেখেন যে ধ্রুব মহারাজ ও কিসলে ভগবান কা তপস্যা ভক্তি করে থে, যে দাদা পরদাদা সবই মেরে কো বড়া সাম্রাজ্য মিলে ইসলে তপস্যা কিয়া, লেকিন যা ভগবান মিল গিয়ে তবে কে বলা মে কাঁচ ঢুঁড়নে কে লায়া মেরে কো কেনা হীরা মিল গে, তো মেরে কো কাঁচ নেই চাইয়ে। উসি প্রকার যে লোক অজ্ঞ জীব হতা ও তো জানতা নেই ইসলে ও সামান্য ছোটি মোটি বস্তু কে লিয়ে ভগবান যাতে হ্যাঁ, লেকিন যাকে দেখতে আর এ তো ছোটি মোটি কে হয় মে তো রত্ন মিল গিয়া, তব ও মানে কামনা ছোড় কে ভক্তি করতে লাগতে হ্যাঁ। এক স্টোরি আছে ইয়াদ আতে হ্যাঁ, আমল ভক্তি আস্তি করে থে শান্তনু সিং বাবু বহু আচ্ছা এক স্টোরি বাতায় থে, যে প্রভুপাত যা প্রথম প্রচার মে গে থে বিদেশ মে, যা প্রভুপাত পেলে কে গিয়া কীর্তন কিয়ে, কীর্তন মে কোন লোক আয়ে হিপি, যে লোক মানে হিপি আচ্ছা কই লোক আয়ে নেই হিপি লোক মানে সরাবি মাতাল এসব লোক আয়ে হ্যাঁ। প্রভুপাত দেখা এ লোক লেগেই মেরে কো পেলে শুরু করে না হ্যাঁ, লেকিন লোক ডাই পহে বলে এই এসব মদ পিনা আচ্ছা নাই দাড়ি পিনা আচ্ছা নাই এসব ছোড় দো, তো কই আপনার নাই এ লোক কো কিসি তারিকা সে ক্যাসে ভি কামনা এ লোক ভক্তি মে লাগানা হ্যাঁ, তবে লোক আপনি আপ ভক্তি কর লেগা। তো প্রভুপাত কে বলা তুম লোক কোন সা এ শরাব পিতো কোন সা নেশা পিতো হো, যে তুরন্ত উসকা নেশা কাট যায় থোড়ি দের বাদ আবি নেশা আবি শরাব পিয়ে দু ঘন্টা বাদ বা সুবে পিয়ে শাম কো নেশা কাট যাতে হ্যাঁ, এই সব মানে লো কোয়ালিটি হ্যাঁ। মে ইন্ডিয়া সে ভারত সে এসে এক নেশালি বস্তু লায়া হ্যাঁ, একবার পিওগে না আর কাবি নেই উতরেগা নেশাই আপনার চড়তেই যায়গা। বলে বা এ তো বহুত বড়িয়া হ্যাঁ, দু দু মেরে কো তো আমরা তো এই চাহতা হুম যে একবার পিলে আর কাবি নেই উতরে, আরে রুকো রুকো দুঙ্গা থোড়া আমি তুরন্ত দে দুঙ্গা, তো আপনার সরকার হাম মেরে কো থোড়ি রাখেগা আমি ইন্ডিয়া ভেজ দেগা, তুমি লোক অন্যায় মিলনে বলা হ্যাঁ মেরে পাশ হাত রহো মে সময় মোকা দেখকে ও লোক দে দুঙ্গা। বলে ঠিক হ্যাঁ, আর প্রভুপাত তো পেলে সে খানা কা ব্যবস্থা করকে রাখে দে ইস্কন বুলেট গোলাপ জামুন কিনা মর্জি খাও প্রসাদ পা বেশ আরামসে প্রসাদ পা দেতে আর প্রভুর সাথে কীর্তন করতে থে, ধীরে 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 ভগবান কা সেবা করতে লাগা ভাগবত পড়তে লাগা, পড়তে পড়তে ও লোক ভুলি গে जे प्रभुपाद जी जे बोले थे जे कुछ एक नेशनली वस्तु देगा कि वो भूल ही गया और पूछना ही भूल गया, क्योंकि वो लोग का तो मिल ही गया जे कृष्ण रस कृष्ण मद में मत्त हो गए, भूल ही गया। उसी प्रकार ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए, ये यहाँ पर जो श्लोक में बता रहे जे कोई भी कामना लेके आप भगवान का भजन कीजिए, जब भक्ति का रस मिल जाएगा तब कुछ याद ही नहीं रहेगा। वही पी लोग क्या किया था, नेशाली वस्तु माने पाने के लिए प्रभुपाद पर आए थे, लेकिन उन्हें ऐसे नेशा मिल गए जो वो नेशा भूल ही गए, कृष्ण प्रेम में मत्त हो गया। अभी देख कितना बड़ा बड़ा भक्त बन गए हैं। इसलिए भक्ति का ये प्रभाव है, जो कि भक्ति का सहारा लेगा वो आसानी से तर जाएगा, उसका कोई समस्या नहीं होगा। प्रभुपाद बताते हैं जे यथाम प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार से भगवान का आराधना करते भजना करते हैं भगवान उसको उसी प्रकार से फल देता है। सबको समान नहीं, देखो कोई भगवान को निर्विशेष मानते हैं, भगवान को शरीर को माया मानते हैं, उसको भगवान क्या अपना पार्षद बनाएंगे? बोले ठीक है तुम मेरे को निराकार मानते हो, मेरे को माया मान तो ठीक है, मेरा ये मायामय जगत में तुम रहो, यहाँ पे जौन चक्र में घूमते रहो। और जो लोग भगवान का शरीर को स्वच्छ विग्रह मानेगा भगवान का आराधना करेगा वो लोग को भगवान श्लोक में क्या बोल रहे ने देहम अव्यम राति माने अविनाशी, भगवान जैसे अविनाशी पार्श्व तो शरीर प्रदान कर राति दोराती पार्श्व शरीर दे देता है उसे मिलेगा। भगवान पार्श्व बना देगा, जब समय समय भगवान जब कोई जगह लीला करने जाएगा उसको उनका साथ पार्श्व बना के लेके जाएगा, लीला समाप्त हो गया फिर अपना धाम में लेके जाएगा, उनका साथ साथ रहेगा। उसी प्रकार जे यथाम प्रपद्यन्ते तां भजाम्य हम, जो जिस प्रकार भगवान का स्वनापन्न होते हैं, जिस प्रकार भाव से भगवान का सेवा करते हैं भजन करते हैं, भगवान उसको उसी हिसाब में फल प्रदान करते हैं। बोले ना ये श्लोक में बताया ना जो इष्टम गति मापनुवंती, अपनी इष्ट फल प्राप्त कर लेते हैं जो जिस हिसाब से भगवान का भजन करेंगे। प्रभुपाद आगे बताते हैं जे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसोऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि जन्तुराणि मायया, बोलते हे भगवान सबके हृदय में आसीन है और भौतिक शक्ति से निर्मित जंतु पर आरूढ़ सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। ये भगवान सबके हृदय में स्थित है, स्थित होके सबको घुमा रहे, आपके कोई जीव स्वतंत्र तो नहीं है, भगवान के इच्छा से करते हैं। जे हमारा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम लोग की इच्छा के अनुसार हम लोग को जितना चीज प्राप्त होना है भगवान प्रदान करते, उसी हिसाब से हम लोग को सही प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं, जे हम लोग जो कर्म किया है जब फल भोग सके इसे प्रदान करते हैं। लेकिन जीव क्या सोचते हैं जी मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे कोई भगवान नहीं मालूम, मैं कोई मेरे कर्म से मैं मिला है, लेकिन मिला तो है ठीक है, लेकिन भगवान को सांसद बिना कोई भोग भी नहीं सकते हैं। आपका सामने बहुत अच्छा रसगुल्ला है लेकिन शुगर हाई पार 500 शुगर, आप खा ही नहीं सकते, देख के ही डर जाओगे खाओगे क्या। भगवान का सांसद बिना कोई कुछ भोग भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है जैसे गर्जन जैसे बुद्धिमान है वो क्या ना भगवान का शरण ले लिया है, उसी प्रकार जो जी भगवान का शरण ले लेगा उसको ये अभी का जो दुख तो बात छोड़ दीजिए, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनका भगवान का पार्षद बन जाएगा, बाद का चिर सुख मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बुद्धिमान होकर भगवान का भजन करना चाहिए। किसी का कितना भी कामना हो क्यों ना हो, आप भगवान का सेवा कीजिए भजन कीजिए, उससे आपको उद्धार होना ही है। इसलिए गजन का तरह हम लोग को भी क्या ना भगवान का भजन तीव्र का साथ भजन करना चाहिए। तीव्र न भक्ति जोगे नजत ही पुरुषम पुरम, बोल रहे जजित आप लोग को भगवान का भजना करना चाहिए, करना है नहीं करना चाहिए, सबको उचित है करना चाहिए। हम लोग को सबको भगवान का आराधना करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री प्रभुपाद की। टाइम हो गया, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय।